नमस्कार साथियों, आप सुन रहे छिंदवाड़ा मोबाइल वाणी। आज हमारे साथ छिंदवाड़ा मोबाइल वाणी पर एक ऐसी शख्सियत रूबरू होने जा रही है जिन्होंने मध्य प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में दार्शनिक पर्यावरणविद पर्यावरण संबंधी नारी अधिकारवादी सामाजिक कार्यकर्ता एवं बसकुहा जंगल बचाओ अभियान के प्रणेता के रूप में उपलब्धि हासिल की है। ऐसी ही एक महिला शक्ति आज हमारे साथ रूबरू होने जा रही श्रीमती करुणा रघुवंशी जी। नमस्कार ताई।
नमस्ते नमस्ते, बहुत बहुत नमस्ते।
ताई, छिंदवाड़ा मोबाइल वाणी पर आपका हार्दिक अभिनंदन है।
जी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
और हम आपसे छिंदवाड़ा मोबाइल वाणी के श्रोताओं के लिए जानना चाह रहे हैं कि पिछले एक साल से जो कोरोना काल चल रहा है
जी,
इसमें प्रकृति के साथ जो छेड़छाड़ हुई है, इसका मानव पर क्या प्रमुख संकट का सामना करना पड़ रहा है?
अब ये जो भी होता है, दरअसल क्या है कि हमारे प्रकृति की संरचना ही ऐसी है कि ईश्वर ने प्रकृति में जो कुछ भी बनाया है वो सब कुछ उपयोगी है। आप अगर उसकी एक चीज को भी छेड़ दोगे, इवन कि आप एक कीड़े को भी छेड़ोगे, तो सब कुछ डिसबैलेंस जो हो जाएगा और उसका सीधा प्रभाव मानव पे पड़ता है। आज हम देख रहे हैं कि कोरोना में जितने लोग दवाई की कमी से नहीं मरे, उससे ज्यादा लोग ऑक्सीजन की कमी से मरे हैं, क्योंकि इतनी अंधाधुंध पेड़ों की कटाई होती है कि, और ये तो जो कोरोना है ये तो मात्र एक ट्रेलर है, फिल्म तो अभी आनी बाकी। यदि हम नहीं सुधरे, हमने प्रकृति से छेड़छाड़ करना बंद नहीं किया, हमने नदियों में उत्खनन बंद नहीं किया, पेड़ काटना बंद नहीं किया हमने, तो हमें कोई भी नहीं बचा सकता, कोई ईश्वर भी नहीं बचाएगा हमें। तो इसलिए सबसे पहले हमें यदि जीवित रहना है, धरती को पे जीवन बनाए रखना है, तो हमें प्रकृति से छेड़छाड़ तो बंद करनी पड़ेगी। वो जिस स्थिति में उसको एज इट इज बनाए रखना है हमें।
दीदी
जी,
हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे
जी
कि इसके भविष्य में और क्या परिणाम देखने को मिल सकते।
अब भविष्य में क्या हो तो दिख ही रहे हैं, जैसे बड़े बड़े ग्लेशियर पिघल रहे हैं। अब ग्लेशियर का हमारी जो नदियां है, जितनी भी बड़ी नदियां है, चाहे वो गंगा हो, यमुना हो, भागी हो, मतलब जो ब्रह्मपुत्र हो, इनका सबका स्रोत क्या है? ग्लेशियर है। जब ये ग्लेशियर, बड़े बड़े ग्लेशियर टूट टूट के गिरेंगे, खत्म हो जाएंगे, तो ये नदियां तो अपने आप सूख जाएगी। और हमारी जो सभ्यता है, आपने ऋतिक रोशन की फिल्म देखी होगी मोहनजोदड़ो, उसमें दिखाया गया है कि अभी नदी पे बांध बांधते हैं तो कितना बड़ा प्रलय आता है। तो आप अगर ग्लेशियर पिघलेंगे तो नदी, समुद्र का तो पानी बढ़ ही जाएगा लेकिन नदियां सूख जाएगी बाद में। और हम देखो केदारनाथ आपदा आई है, केदारनाथ में आप अगर उसको धार्मिक आस्था में देखें तो केदारनाथ में पहले के समय में शाम के 5 बजे के बाद वहां लोग नहीं जाते थे, क्योंकि वहां थोड़ी सी भी हलचल से वहां पर जो आंतरिक भूगर्भ में हलचल होती है वो प्रलय का कारण बनती है। और केदारनाथ शताब्दी की सबसे बड़ी प्रलय थी, और अभी भी कुछ दिन पहले वहां पे जो एक एनटीपीसी का पावर प्लांट बन रहा था तो वहां पे प्रलय आया, उसमें कितने सारे मजदूर मर गए। तो आप भविष्य में ऐसी कई बीमारियां आएगी, प्रलय आएंगे, सुनामी आएगी, भूकंप आएंगे, ज्वालामुखी निकलेंगे, प्रकृति से छेड़छाड़ करेंगे, तो जब प्रकृति अपने दंड देने पे उतारू होती तो फिर वो किसी ना कोई बड़ा देखती है ना छोटा देखती है, वो तो सबको एक साथ दंड देती है। जो दोषी है उसको भी मिलता है और जो निर्दोष है उसको भी मिलता है।
ताई, इस संकट से हम कैसे बाहर निकल सकते हैं और इसके लिए क्या प्रयास करने होंगे?
अब इस संकट से तो निकलने के लिए तो हमको सबको मिलके ही प्रयास करने पड़ेंगे। यदि हम सिर्फ सरकार को ही दोष देते रहे तो वो भी गलत है, सरकार जनता के भरोसे बैठी रही तो भी गलत है। तो सबसे पहले तो अभी हमें इसे मेडिकल इमरजेंसी के तहत, एक तो हमें इसको पहले तो इस पे कंट्रोल पाना पड़ेगा दवाइयों से, फिर जो भी वैक्सीनेशन है उससे, लेकिन उसके बाद हर व्यक्ति को, जैसे हमारा राष्ट्रीय जंगल बचाओ अभियान का जो हम 4 शपथ दिलाते हैं व्यक्ति को कि वो जीवन में 3 पेड़ लगा के जरूर पालेगा, 2 मुट्ठी अनाज उसको पक्षियों को देना है, फिर वो नदियों का संरक्षण करेगा, ये तीनों कंपलसरी है, और चौथा है कि वो रोज 1 रुपए जमा करेगा, और इसलिए जमा करेगा कि हमारे जो सदस्य गरीब होते हैं, यदि वो पक्षियों को भोजन नहीं करवा सकते तो वो हम उन पैसों में से उनको देके फिर पक्षियों को भोजन देते, क्योंकि हमारी प्रकृति में जितना जरूरी पक्षी है उतना जरूरी पेड़ पौधे है, उतनी ही जरूरी पक्षी भी है। तो हमें पशु पक्षियों का भी संरक्षण करना है, वन्य जीवों का, मछलियों का, हर चीज का, तितलियों का, तो हमें पेड़ तो लगानी है, तो अभी इससे निकलने का सबसे अच्छा तो वही है कि आप प्रकृति के साथ जाए। जैन धर्म में जैसे प्रकृति का संरक्षण बताया है, सनातन धर्म में बताया है, और बिश्नोई समाज की जो जीवन शैली है हमें उसको अपनाना पड़ेगा, क्योंकि बिश्नोई समाज जो होता है राजस्थान का, वो बहुत ही प्रकृति प्रेमी होता है। और पूरे देश में हमें आर्मी मॉडल लागू करना चाहिए, जो आर्मी एरिया में जो होता है कि ये लोग प्रकृति को बहुत अच्छे से सहजते हैं, जो हमारी सेना है वो। और इसके लिए तो मैं सेना को सैल्यूट करना चाहती हूँ आपके इसके माध्यम से, कि अगर एक पेड़ भी है तो उस पेड़ को भी बचाने के लिए वो अपने पूरी की पूरी प्लानिंग चेंज कर देते हैं, क्योंकि मेरा प्लांटेशन का काम कुछ आर्मी के साथ भी चलता है। तो इससे निकलने का तो यही है कि हम प्रकृति का संरक्षण ऊपरी लेवल से निचले लेवल तक के हर व्यक्ति को करना चाहिए। सरकार के प्रयास के साथ हमें कदम से कदम मिला के चलना चाहिए, और सरकार को भी ईमानदार प्रयास करना चाहिए। तो हमें तो प्रकृति को संरक्षण से ही हम इस प्रकार की जो विनाश लीला है इसको रोक सकते हैं।
तय हम ये भी जानना चाहेंगे, जो अवैध कटाई, अवैध उत्खनन और विकास के नाम पर प्रकृति के साथ जो छेड़खानी होती है, इसको रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए जाते हैं और क्या वो कारगर सिद्ध होते हैं?
देखिए, सरकारी नियम तो इतने सारे हैं कि इतने नियम है सरकारी की कि यदि आप एक पेड़ काटते हैं और यदि वो किसी ने शिकायत कर दी, तो कानून में ऐसा नियम है कि यदि आप एक पेड़ काटेंगे तो अभी सुप्रीम कोर्ट ने एक पेड़ की कीमत तय की है 53 लाख रुपए। तो यदि आप सरकारी के, तो अवैध उत्खनन के इसके लिए बहुत सारे नियम हैं कि आप उसमें क्या प्रावधान है उसमें, वो आपको कानूनी कार्रवाई होती है, दंड दिया जाता है, लेकिन ये लागू कितने होते हैं तो हम सब जानते हैं। अब इसके लागू होने के पीछे वजह ये है कि अब सरकार ने तो इतने सारे कानून बना दिए, लेकिन हर जगह तो सरकार पहुंचेगी नहीं। अब जैसे नर्मदा नदी के किनारे 6 करोड़ पेड़ लगाए थे शिवराज सरकार ने, अब शिवराज सिंह चौहान ने भले ही पेड़ लगा दिया, वो तो हर जगह जाके देखेंगे नहीं ना, तो वहां जो व्यक्ति करीबी है उसका उत्तरदायित्व बनता था कि इन पेड़ों को सूखने से बचाए। इस तरह यदि एक एक व्यक्ति भी 100-100 पेड़ों को बचाता तो आज 6 करोड़ पेड़ लगे होते। कमलनाथ सरकार में 11 लाख पेड़ लगे थे भोपाल में, 11 लाख पेड़ में से शायद मेरे ख्याल से 11 भी जीवित नहीं होंगे, क्योंकि कमलनाथ जी तो पूरे भोपाल में जाके पानी तो डालेंगे नहीं। ये तो हर नागरिक का कर्तव्य है कि उन्होंने आपको पेड़ लगा के दिए हैं, तो हर नागरिक 4-4, 6-6 पेड़ को जो ये करे। और इसको इम्प्लीमेंटेशन कराने में अधिकारियों की मेन भूमिका होती है, तो अधिकारी लोग भी एक तो बिल्कुल ही उदासीन होते हैं, और जो 10% बहुत अच्छा काम करते हैं तो कितना अच्छा काम करेंगे। तो ये सबका समेकित प्रयास होना चाहिए, सरकार का, प्रशासन का और पब्लिक का, और जनता का भी उत्तरदायित्व है। एक्चुअल में हमारी भारत की बड़ी अजीब विडंबना है कि जनता को बस वोट देना है, उसके बाद सब कुछ उसके फ्री में चाहिए, उसको हवा फ्री में चाहिए, पानी फ्री में चाहिए, हर चीज उसको फ्री में चाहिए। अपने नैतिक कर्तव्य जो होते हैं, मौलिक कर्तव्य, वो किसी को नहीं निभाने हैं। हमारा पानी बह रहा है नल का रेलवे स्टेशन पे, उसको वहीं खड़े होकर बात करेंगे, उसको ये नहीं कर सकते। तो ये जो हमारे मौलिक कर्तव्य है, ये हर व्यक्ति को अपना देश, मेरा देश है और मेरे इसके प्रति कर्तव्य, वो करके निभाना पड़ेगा, तभी कुछ होगा। क्योंकि सरकार तो हर जगह नहीं पहुंच पाएगी, और सरकार को भी ईमानदार प्रयास करने चाहिए। सरकार करती भी है, और बहुत सारे सरकारी नियम है, लेकिन मानते कितने लोग है। अवैध उत्खनन, मध्य प्रदेश की कौन सी नदी है जिसमें अवैध उत्खनन नहीं हो रहा रेतों का, जबकि नदियों की जान ही रेत होती है, क्योंकि उसके जो पार्टिकल होते हैं छोटे छोटे, वही पानी को रोके रखती है, उसी में जीव जंतु पलते हैं। नर्मदा कहे या कन्हान कहे या वो कोई सी भी नदी ऐसी नहीं है जिसमें अवैध उत्खनन नहीं होता है। और हम अधिकारियों को भी गलत नहीं कह सकते, बेचारे उनके पास एक तो इतने इंस्ट्रूमेंट नहीं होते हैं कि वो माफियाओं से लड़ सके। कितने ऐसे अधिकारी हैं जिनको माफियाओं ने मार दिया, बेचारे ईमानदारी से उन पे ट्रैक्टर चढ़ा देते हैं, उनको गोली मार देते हैं, उनकी गर्दन काट के वन अधिकारियों को फेंक दिया जाता है। तो ये अगर हमको इस चीज से बचना है, तो सबसे ज्यादा हमें प्रकृति के प्रति, जो पहले हमारे यहाँ था कि नदी को माँ माना जाता है, वृक्षों को बिल्कुल पूज्य माना जाता है, पक्षियों को पूज्य माना जाता है, तो जब तक हम हमारी पुरानी संस्कृति में हर चीज को अपनी आस्था के तहत और उनको जीवित मान के और अपने मन में मानवता नहीं लाएंगे, तो कुछ भी संभव नहीं है। क्योंकि इतना लोग पैसों के पीछे भाग रहे हैं कि वो बिल्कुल नहीं सोच पा रहा है कि हम कहाँ जा रहे हैं। क्योंकि आज देखिए, कोरोना में ऑक्सीजन की कमी से अमीर लोग भी मरे हैं और गरीब भी मरे हैं। उस समय तो किसी ने, कोरोना ने नहीं देखा ना कि ये व्यक्ति अमीर है तो इसको मैं छोड़ दूं। उसने उन पैसों, कितने पता नहीं किस किस तरीके से पैसे कमाए, लेकिन अंत में वो पैसे भी काम नहीं आए, और उसे वो छोड़ के सब कुछ जाना पड़ा। तो ये हर व्यक्ति को सोचना चाहिए कि हर चीज पैसा ही नहीं होती है, पैसा सब बहुत कुछ है लेकिन सब कुछ नहीं है। और उसको हम प्रकृति को 10 पेड़ काट के बेच दे, जिन सांसों को हम बेच रहे उन्हीं सांसों को हम खरीद नहीं पाए। तो हर व्यक्ति को एक सनातन धर्म, जैन धर्म, और मैं तो कहूँ किसी भी धर्म में ये नहीं कहा है कि आप पेड़ों को काटो या किसी जीव की हत्या करो, किसी धर्म में मैं मान ही नहीं सकती। मैंने पढ़े तो नहीं है सारे धर्म, लेकिन बहुत सारे, जैसे हमारे साथ बहुत सारे मुस्लिम धर्म के लोग हैं, जैनी हैं, बुद्धिस्ट मानने वाले हैं, सिख है, मतलब हर धर्म के व्यक्ति पर्यावरण के साथ काम करते हैं। तो वो लोग तो कभी नहीं कहते कि हमारे साथ ऐसा कर, हमारे धर्म में ऐसा है। तो हर धर्म के लोगों को जो दया मूल भाव है हमारे धर्म की आत्मा, हम उसको जब तक अपने दैनिक जीवन में इम्प्लीमेंटेशन नहीं करेंगे, कुछ भी संभव नहीं। चाहे सरकार लाख प्रयास कर ले, प्रशासनिक अधिकारी लाख ईमानदार हो जाए, कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि हर व्यक्ति को, हमको सरकार, प्रशासन और पब्लिक को, सबको अपने अंदर एक मानवता ला के काम करना पड़ेगा, तभी ये धरती बचेगी।
भाई हम आपसे और ये जानना चाहते हैं, आप राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर
जी
उनको लेकर कार्य कर रही हो, और हमारे देश में भी जंगल को बचाने के लिए कई आंदोलन चले, जैसे चिपको आंदोलन, जंगल सत्याग्रह, और आपके माध्यम से भी बसकोहा जंगल बचाओ अभियान की शुरुआत की गई। तो आपको ये बसकोहा जंगल बचाओ अभियान क्यों शुरू करना पड़ा और इसके पीछे आपका मकसद और उद्देश्य क्या थे?
तो देखिए सर, हमारी तो सबसे पहले हमारी पर्यावरण प्रेमियों की माता अमृता देवी है, बिश्नोई समाज की, मैं तो माता को प्रणाम करती हूँ। सुंदरलाल बहुगुणा जी हमारे आदर्श है, जिन्होंने चिपको आंदोलन चलाया था। फिर राजेंद्र कुमार जी है जो जल पुरुष कहलाते हैं, उन्होंने, मेधाताई ने, और राजेंद्र राजगोपालचारा जी, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने पर्यावरण के क्षेत्र में, बहुत सारे संत हैं जो गंगा मैया की रक्षा के लिए जिन्होंने अपना जीवन कुर्बान किया है, बहुत से ऐसे संत हैं। तो मैं तो इन सब के, बाबा आमटे जी है, अन्ना हजारे जी है, और महाराष्ट्र के तो बहुत सारे समाज सेवक है जो पर्यावरण के क्षेत्र में, और बल्कि पूरे देश में हजारों संस्था है जो काम कर रही है। तो मैं उन सबको प्रणाम करती हूँ, और आपके इसके माध्यम से मैं सबसे ज्यादा धन्यवाद दैनिक भास्कर का प्रेषित करना चाहती हूँ कि जब भी पर्यावरण का मुद्दा आता है तो दैनिक भास्कर अपना सारे लाभ छोड़ के, अपना सब कुछ छोड़ के, वो बिल्कुल पर्यावरण के लिए हमारे साथ में आ जाता है। तो बिल्कुल आपके इसके बाद मैं दैनिक भास्कर का जरूर धन्यवाद करना चाहूंगी, क्योंकि मैं तो इतनी बड़ी नहीं हूँ कि मैं दैनिक भास्कर के भी, मतलब जो चीफ ब्यूरो को फोन करके धन्यवाद कह सकूं। तो बक्सवा जो आंदोलन है, ये दैनिक भास्कर ने ही एक्चुअल में छापा था इसको। तो मेरे को पेपर की कटिंग मिली थी कहीं, तो मुझे बार बार वो चीज बेचैन कर रही थी। फिर मैंने हमारे झारखंड के जो उद्घोष फाउंडेशन के कमलेश कुमार जी है, जो बहुत अच्छा काम करते हैं वहाँ, फिर धर्मेंद्र जी है पीपल नीम तुलसी अभियान के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काम करते हैं, फिर हमारे रायसेन के है जो भूपेंद्र जी है, भूपेंद्र सिंह रघुवंशी जी, फिर हमारे कैप्टन साहब है इसमें सतना के, जो टामस नदी बचाओ अभियान को बहुत बड़े स्तर पे करते हैं, और सुखजीत सिंह जी है पंजाब से, और हरियाणा से है, बहुत सारे लोग हैं, मतलब पूरे देश की करीबन 1000 संस्थाएं हमारे साथ है। मैंने सबको बताया तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये तो बहुत बड़ा जंगल है। अब चूंकि क्या कोई भी जंगल होता है वो सिर्फ जंगल नहीं होता है, वो दुनिया होती है वहाँ के पशु पक्षियों की, वहाँ के जंतुओं की, और वो अरमान होता है वहाँ के रहने वाले जो जातियाँ होती है उनकी, क्योंकि उनकी जीविका उसी से चलती है। अब मेरा तो बक्सवा में इसलिए था क्योंकि मुझे पेड़ और पक्षियों से इतना प्रेम है कि मैं तो सिर्फ पेड़ और पक्षियों के साथ पूरी जीवन भर रह सकती हूँ। तो मुझे लगा कि अरे बाप रे, 3 लाख पेड़ कटेंगे। तो फिर मैंने अपने सारे साथियों को बताया, फिर हमने ट्विटर पे ट्रेंड चलाया इसके सपोर्ट में। तो शायद हिंदुस्तान के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि पर्यावरण के लिए, देश तो छोड़िए बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, इजराइल से के लोग, नागरिकों का समर्थन प्राप्त है, और 3 घंटे में 1,22,000 ट्वीट हुए थे, और नंबर 1 पे ट्रेंड किया था @ सेव बक्सवा फॉरेस्ट, इंडिया स्टैंड भी सेव बक्सवा फॉरेस्ट, और 3 दिन में 2 लाख ट्वीट हुए थे इसके समर्थन में। तो ये बक्सवा जंगल जो है, ये एक्चुअल में वहाँ हीरा, ऐसा हमने सुना है कि वहाँ हीरा मिला था, रियो टिंटो कंपनी है जो ऑस्ट्रेलिया की, इसको तो वहाँ पर हीरा है। तो अब इसमें सरकार की भी सोच शायद ये हो सकती है कि भाई वहाँ हीरा मिलेगा तो हमको राजस्व की प्राप्ति होगी और फिर लोगों को रोजगार मिलेगा। तो अब सीए कोई भी इसमें पहले ये इनको बीजेपी सरकार ने शुरू किया, फिर इसको हरी झंडी कमलनाथ जी ने दी, जबकि कमलनाथ जी तो बहुत बड़े पर्यावरणविद है और उनको तो पर्यावरण की इतनी समझ है कि जब विधानसभा भवन के लिए वो विधायकों के विश्राम गृह के लिए यहाँ 14 एकड़ जमीन आवंटित हुई थी भोपाल में, और हमने उसका विरोध किया था, और जैसे ही कमलनाथ जी के पास हमारा डेलीगेशन गया तो कमलनाथ जी ने 2 मिनट में समझी हो बात, और उन्होंने कहा कि ठीक ठीक अब तो बिल्कुल नहीं बनेगा। और शिवराज सिंह जी चौहान जी भी बहुत संवेदनशील है, मैंने उनको मतलब देखा है, मैंने वो बहुत तल्लीनता से वृक्षारोपण करते हैं बिल्कुल हमारे की तरह, तो अगर उनको भी शायद पूरे तथ्यों की उन्होंने देखा नहीं होगा, क्योंकि सीएम को पूरा प्रदेश देखना पड़ता है, प्रदेश कोई छोटा मोटा तो है नहीं, तो हो सकता है उनकी नजरों से ये चीज बच गई होगी। और उनको भी अगर कोई व्यक्ति अगर समझाए कि ये करे, तो मैं तो बिल्कुल 100% कह सकती हूँ कि वो जैसे कमलनाथ जी ने विधायक विश्राम गृह को बिल्कुल कैंसिल कर दिया, तो वो भी बिल्कुल हीरा कंपनी को, जो बिरला कंपनी है उसको बिल्कुल मना कर देंगे। और बिरला कंपनी का भी कभी ऐसा इतिहास नहीं रहा है कि उसने लोगों के हितों की परवाह ना करते हुए अपनी दादागिरी बताई हो, तो खुद बिरला कंपनी भी वापस हो सकती है। और शिवराज सिंह चौहान को जब तथ्यों की जानकारी होगी तो मैं बिल्कुल कह सकती हूँ 99% की वो कहेंगे कि नहीं, क्योंकि वो कभी जनहित के मुद्दे पे जिद नहीं पकड़ते हैं, मैं जितना उन्हें जानती हूँ। और चाहे कमलनाथ जी है, वो तो मेरे संसदीय क्षेत्र के रहे हैं, तो वो तो करते ही नहीं, पर शिवराज सिंह चौहान जी भी कभी नहीं करते हैं, तो उनको अगर पता चलेगा तो निश्चित रूप से जनता के हितों का ख्याल रखेंगे, और बिल्कुल ही वो पहली फुर्सत में कहेंगे कि नहीं अब इसे बंद करो, हम तो बस जंगलों से ही हमारे लोगों को रोजगार दिलवाएंगे।
भाई आपसे अपना अब मैं अंतिम प्रश्न पूछना चाहता हूँ। उसके
जी
पहले आपके द्वारा जो बात कही थी दैनिक भास्कर को लेकर, वाकई
जी
में दैनिक भास्कर छिंदवाड़ा बैतूल ही नहीं तो संपूर्ण देश में महत्वपूर्ण बिंदु पर अपना पहली खबर छापता है, और
जी
साथ ही एक बहुत अच्छा एक समाचार पत्र बन के भी उभरा है।
जी
छिंदवाड़ा मोबाइल वाणी के माध्यम से आपका यह संदेश दैनिक भास्कर टीम तक अवश्य पहुंच जाएगा, इतना मैं आश्वस्त करता हूँ। साथ ही
जी
मैं आपसे यह जानना चाहता हूँ कि आपका प्रॉपर कहाँ का है, जो आपने अपने साक्षात्कार में कहा कि मैं छिंदवाड़ा से हूँ, तो कहाँ का है, और यहाँ इस क्षेत्र के लिए आप क्या करना चाहेंगे, आपका छिंदवाड़ा मोबाइल वाणी के श्रोताओं के लिए क्या संदेश है कि हमें जंगल को किस तरह बचाना है ताकि भविष्य हम संवार पाए।
सर, मैं तो वैसे रहने वाली बैतूल की हूँ, और मेरी कुछ जमीन मतलब मेरा कुछ थोड़ा सा रिश्ता छिंदवाड़ा से भी है, लेकिन मैं फिलहाल भोपाल में रहती हूँ। लेकिन मेरे को अभी वहाँ जो आपके कन्हान बचाओ अभियान है, वहाँ के लोगों ने संपर्क किया था कि दीदी यहाँ पर जो कन्हान बचाओ अभियान चलता है, तो जब भी ये ऐसा शायद 15 या 18 गांव का चलता है, तो जब भी हो तो आप जरूर आइए। मैं तो छिंद और हमारे बैतूल के घोड़ा डोंगरी में भी महात्मा गांधी जी के द्वारा एक आंदोलन हुआ था जंगल बचाओ का 1930 में, अब तो शायद वो पीढ़ियां बची नहीं है। तो मैं तो सभी लोग को ये संदेश देना चाहती हूँ कि आप सरकार को इतनी सारी योजना है किसानों के लिए, हर व्यक्ति के लिए, तो आप सरकार की योजनाओं का लाभ ले, और हम हर चीज के लिए सरकार के भरोसे नहीं रह सकते। सरकार हर दरवाजे पे जाके वृक्षारोपण नहीं करेगी, हर दरवाजे पे जाके एक एक मुट्ठी अनाज नहीं डालेगी, तो ये हर नागरिक का कर्तव्य है कि अपने जीवन में कम से कम 3 वृक्ष जो ऑक्सीजन देते हैं, फल देते हैं, उनको जरूर लगाए आप, क्योंकि ये बहुत बड़ा पुण्य है। आपके जाने के 200 साल बाद भी वो आपके रूप में याद रहेंगे। आप पक्षियों को अनाज दीजिए, जब पक्षियों की कलरव सुनाई देती है तो शायद बहुत कम लोग जानते हैं कि पक्षियों की आवाज से माइग्रेन और बहुत सारी बीमारी मतलब हाई ब्लड प्रेशर भी ठीक होता है। तो और नदियों में, और मैं एक चीज ये भी बोलना चाहती हूँ कि जो उद्योगपति है जो किसी भी क्षेत्र में, उनको भी अपनी नैतिकता का ध्यान रखना चाहिए कि हम सारे अपना गंदगी पूरी नदियों में मिला रहे हैं, हम रेतों का उत्खनन कर रहे हैं, भाई तुम पैसे लेके कहाँ जाना है, ऊपर तो कुछ ले ही नहीं जाना है, सब यहीं छोड़ के जाना है आपको। तो मैं सभी को ये संदेश देना चाहती हूँ कि आप इसे ना किसी सरकार का प्रश्न बनाएं, ना किसी पार्टी का प्रश्न बनाएं, ये मानवता बचाने का प्रश्न है। हर व्यक्ति को नदी बचाने के इसमें प्रयास करना चाहिए, अपने जीवन में 3 वृक्ष, हमारा तो बेंच मार्क होता है जंगल बचाओ अभियान का, तुलसी, पीपल और बरगद और नीम, ये हम त्रिवेणी जरूर लगाते हैं क्योंकि इसका धार्मिक भी बहुत महत्व है कि जब हमारे घर के पास त्रिवेणी लगी होती है और हम उसमें जल चढ़ाते हैं तो संगम स्नान का पुण्य मिलता है। यदि हम उसको मंदिर के किनारे लगाते हैं तो अश्वमेध यज्ञ का पुण्य मिलता है, और वैसे भी ये पूजनीय है। तो 3 वृक्ष अपने जीवन में हर व्यक्ति लगाए, एक बार घर में 4 लोग है तो 12 पेड़ आप लगाए, तो 2 मुट्ठी दाना पक्षियों को दे, नदियों में कोई व्यक्ति यदि अतिक्रमण कर रहा है तो उसको छुड़वाए, गांव गांव में टोलियां बनाए और प्रकृति का संरक्षण करें, पेड़ पौधों को बिल्कुल ना काटे कि हम लकड़ी जलाने के लिए काट रहे हैं तो इतनी अनाप शनाप काट के पड़ी रहती है वो। और थोड़ी जो भौतिकवादी है कि खूब घर में फर्नीचर बना लिया सागौन का, तो ये सारी चीजें हमें समेकित वन विभाग वालों को भी इन चीजों पे ध्यान देना चाहिए कि हमारा ये नौकरी नहीं है, हमारा नैतिक कर्तव्य है। और ये जो लोगों ने बना रखा है कि नहीं हम तो उद्योगपति है, हमारा कोई काम नहीं, हम सरकारी कर्मचारी है, हमारा कोई काम नहीं, ये सारा काम या तो पर्यावरणविदों का है या सरकार का है। तो सांसें सरकार भी लेती है, पर्यावरणविद भी लेता है, सरकारी कर्मचारी भी लेते हैं, उद्योगपति भी लेता है, मजदूर भी लेता है। तो जब आप कोई चीज ले रहे हो, आप जब अधिकार ले रहे हो, तो आपको जिम्मेदारी तो निभानी ही पड़ेगी, तभी ये धरती बचेगी। मैं तो देश की बात नहीं कर रही हूँ क्योंकि आज ये समस्या हर जगह है, लेकिन दूसरे देशों की इतनी विकसित टेक्निक है कि जिस देश में नदियों को माता कहा जाता है उस देश में नदियों की आप हालत देख लीजिए कि एक भी नदी नहीं बची है हिंदुस्तान की जिसमें आप जाके ऐसा लगे आपको कि नहीं नहीं मैं तो पवित्र हो गया। सबका यही हाल है, चाहे यमुना हो चाहे कोई और, ये मैं जितनी भी नदियां बता रही हूँ यहाँ पर, ना तो बीजेपी की सरकार है, ना कांग्रेस की है, ना आम आदमी पार्टी की, सारी सरकार मिक्स मिल जाएगी। तो सरकार के साथ साथ आम जनता को भी प्रयास करने चाहिए, उद्योगपतियों को भी अपनी नैतिकता निभानी चाहिए, और हर व्यक्ति को ये सोचना चाहिए कि नहीं प्रकृति का संरक्षण मुझे करना है तो मुझे अपने जीवन में 3 वृक्ष को लगा के उसको पाल के बड़े करना है, ताकि मैंने जिंदगी भर जितनी ऑक्सीजन ली है उतनी तो मैं इस पृथ्वी को लौटा के जाऊं।
बहुत बहुत धन्यवाद दीदी आपका कि आपने छिंदवाड़ा मोबाइल वाणी के साथ रूबरू होकर अपनी राय छिंदवाड़ा मोबाइल वाणी के श्रोताओं के लिए साझा किया। मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि आपके इस अभियान में छिंदवाड़ा मोबाइल वाणी निरंतर आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर कार्य करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद
जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, नमस्कार
नमस्कार।